आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। इस साल की पहली तिमाही में ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक वृद्धि दर 0.2% रही है, जो कि अर्थशास्त्रियों की 0.4% की उम्मीद से काफी कम है। दिसंबर तिमाही में 0.6% की बढ़त के बाद घरेलू खर्च, कारोबारी निवेश और सरकारी खर्च में उम्मीद से कम बढ़त के चलते विकास दर धीमी पड़ी है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सालाना आर्थिक विकास दर 1.3% पर स्थिर बनी हुई है। इन नए आंकड़ों पर कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि भले ही यह वृद्धि मामूली हो, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण माहौल में इसे एक सकारात्मक संकेत माना जाना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ACTU का कहना है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी देश के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। फेयर वर्क कमीशन ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद 1 जुलाई से लगभग 30 लाख कर्मचारियों को 3.5% की वेतन बढ़ोतरी मिलेगी। अब न्यूनतम वेतन बढ़कर प्रति घंटे $24.95 हो जाएगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया की कुल वर्कफोर्स का पांचवा हिस्सा प्रभावित होगा। ACTU की सेक्रेटरी सैली मैकमेनस का कहना है कि कर्मचारियों की आमदनी अब भी महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने चैनल 7 से कहा कि भले ही जीने लायक वेतन की परिभाषा पर दोबारा सोचने की जरूरत हो, लेकिन ये वेतन वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरी ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ वेस्ट शेल्फ गैस प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी देने के फेडरल सरकार के फैसले के विरोध में आज यानी 4 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हर राज्य और टेरिटरी की कंजर्वेशन काउंसिल ने इन प्रदर्शनों का आयोजन किया। उनका कहना है कि इस मंजूरी से नए गैस फील्ड खोलने की मांग और बढ़ सकती है, जैसे कि वुडसाइड कंपनी का प्रस्तावित ब्राउस प्रोजेक्ट जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के किम्बली तट के पास है। काउंसिल का कहना है कि इससे स्कॉट रीफ को भारी नुकसान हो सकता है। ये एक नाजुक कोरल रीफ सिस्टम है जो संकटग्रस्त पिग्मी ब्लू व्हेल, ग्रीन सी टर्टल्स और डस्की सी स्नेक्स जैसी प्रजातियों का घर है। संगठनों का कहना है कि इस फैसले के प्रभाव बेहद गंभीर हो सकते हैं। वहीं इस हफ्ते मिंजन ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड अबोरिजिनल और आइलैंडर कम्युनिटी हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रथम राष्ट्र हेल्थ प्रोवाइडर्स एक साथ आएंगे। इस वार्षिक सम्मेलन में सामुदायिक नेता, स्वास्थ्य कर्मी और राजनेता शामिल हो रहे हैं, जहां समुदायों को अपनी सेहत पर ज्यादा नियंत्रण देने और क्लोजिंग द गैप के लक्ष्यों को हासिल करने के बेहतर तरीके पर बातचीत की जाएगी। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यभर में प्रथम राष्ट्र समुदायों की सेहत सुधारने के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। डार्लिंग डाउन्स और टुवुम्बा में सक्रिय गुलबरी अबोरिजिनल हेल्थ एडवांसमेंट कंपनी की मुख्य सचिव लिजी एडम्स ने NITV से कहा कि सरकार को इन वादों को लेकर गंभीर होना होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पापुआ न्यू गिनी के रक्षा मंत्री का कहना है कि उनका देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति बनना चाहता है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वार्षिक रक्षा कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए PNG के मंत्री बिली जोसेफ ने कहा कि वे इस क्षेत्र की जटिल रणनीतिक परिस्थितियों को भलीभांति समझते हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका ने चाइना के प्रभाव को कम करने के प्रयास में प्रशांत क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक कोशिशें तेज की हैं, जिसमें 2028 में पापुआ न्यू गिनी की नेशनल रग्बी लीग टीम को प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए फंडिंग देना और इस साल की शुरुआत में PNG ऑस्ट्रेलिया रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करना शामिल रहे हैं। दूसरी ओर टेक अरबपति और अमेरिका सरकार के पूर्व सलाहकार एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और खर्च वाले बिल को घिनौना और फिजूल खर्ची से भरा बताया है। ट्रंप प्रशासन छोड़ने के कुछ ही दिन बाद मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इसे और सहन नहीं कर सकते। वहीं कुछ रिपब्लिकन नेता भी बिल की लागत को लेकर चिंता जता रहे हैं, जिसमें टैक्स कटौती बढ़ाने और सैन्य व सीमा सुरक्षा खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत में कोविड 19 के मामले एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 276 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या अब 4302 हो गई है। दिल्ली और गुजरात में सबसे ज्यादा 64 नए मरीज मिले हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश में 63 और पश्चिम बंगाल में 60 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 581 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 7 मरीजों की जान गई है। दिल्ली में एक 22 साल की लड़की की जान गई, वहीं महाराष्ट्र में 4 और तमिलनाडु व गुजरात में एक एक मृत्यु दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नागरिकों से अपील की जा रही है कि भीड़ से बचें, लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की गंभीरता कम है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसी के साथ 4 जून 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।